ओम शांति। अर्थात भगवान बनना ऐसा, बाप समान बनना भी तो लक्ष्य है, चलो भगवान नहीं तो मास्टर भगवान बनना ऐसा लक्ष्य है हम सभी का। ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। और क्या है लक्ष्य, इसके और दूसरे शब्द क्या हो सकते हैं? फरिश्ता बनना, कर्मातीत बनना, और भी कुछ है, संपूर्ण बनना, बाबा को प्रत्यक्ष करना, और स्वयं को क्या बनाना, और शब्दों में बोलेंगे गुणवान बनाना, और एक शब्द नहीं वो नहीं आया अब तक, स्वयं को विजयी बनाना और स्वयं को बहुत शक्तिशाली बनाना है। वो भी लक्ष्य हमारे लक्ष्य में फरिश्ता बनना या बाप समान बनना, इसमें गुणों से संपन्न और शक्तियों से संपन्न, ये दो चीजें तो मुख्य आती हैं। तो मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा कि क्या हम सभी अपने इस महान लक्ष्य को पाने के लिए उत्सुक हैं, क्या हमारा अंतर विवेक हमें बार बार याद दिलाता है तुम्हारा इतना ऊंचा लक्ष्य है बाप समान बनना। शब्द बहुत साधारण है, भगवान जैसा बनना, उस जैसा शक्तिशाली, उस जैसा पावन, वो गुणों का सागर है तो गुणों के सागर बनना, जितनी भी उसके पास योग्यता और विशेषताएं हैं उनका स्वरूप बन जाना, बहुत बड़ी मंजिल है। हम सब जानते हैं जो चीजें हमने 5000 साल में खोई हैं वो सब थोड़े से समय में पा लेना सहज काम तो नहीं है। तो क्या हमें अपने इस महान लक्ष्य की स्मृति है, या हमने सुना है इसलिए हम कहते हैं? तो हमें अपने पास एक संकल्प रखना चाहिए कि हमारा महान लक्ष्य, अगर हमें इस महान लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमारा कार्य सेवाएं, हमारे संपर्क संबंध, मार्ग में आने वाली बाधाएं और परिस्थितियां हमसे इस महान लक्ष्य को भुलाए नहीं। अगर आप अपने पर एक दृष्टि डालकर देखें तो रोज क्या हमें एक बार भी अपना महान लक्ष्य याद आता है, या जो छोटे छोटे लक्ष्य हैं रोज के वही याद रहते हैं? तो अगर हम अपने को इस तरह सेट कर लें कि संसार की कोई भी बात, किसी व्यक्ति के बोल, किसी का व्यवहार या हमारी सेवाओं की व्यस्तता हमसे इस महान लक्ष्य को भुलाए नहीं, तो हमारा जीवन बहुत महान बन जाएगा, उपराम हो जाएगा, हम अनासक्त हो जाएंगे इस संसार से और जीवन में अलौकिकता आ जाएगी। मैं दो बातें और आपके सामने रखूं। हम लोग यहां ज्ञान सरोवर में कुछ विशेष चीजों के अभ्यास करते हैं सामूहिक रूप से। एक अच्छा ग्रुप है जिसमें पिछला हफ्ता एक अभ्यास किया बाप समान बनने का, और उसमें लिखने के लिए सभी को एक टॉपिक दिया गया था, एक दूसरे शब्दों में दिया गया था, जैसे आप सभी ने लौकिक पढ़ाई पढ़ी है तो ऐसे लिखते हुए ऐसे टॉपिक्स होते थे कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो हमने सबको टॉपिक दिया कि अगर मैं भगवान होता तो बहुत आनंद लिया सभी ने इसका, उसके समान बनना है। तो ये चिंतन का बहुत अच्छा तरीका है, हमें बाप समान बनना है तो क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए। हम जरा बाबा की सीट पर बैठकर देखें, ऊपर सूक्ष्म वतन में एक सीट को हम इमेजिन कर लें जहां भगवान बैठ के अपना कार्य करता हो, उसका ऑफिस, और वहां हम बैठ जाएं उसकी जगह, वो कहीं काम पर गया हो और हम वहां बैठकर सोचें कि हम इस संसार के लिए क्या क्या करना है, तो एक बहुत अच्छा चिंतन और बहुत श्रेष्ठ स्मृति हमारे पास आ जाएगी कि अगर हमें बाप समान बनना है तो कैसे हमें छोटी छोटी बातों से ऊपर निकल जाना चाहिए। अगर छोटी छोटी बातों में आत्मा उलझी रह गई तो बाप समान बनना तो एक स्वप्न ही रह जाएगा। बहुत बड़ी स्थिति है ये, बहुत अच्छी तपस्या, त्याग, महान विचारों के द्वारा इसके समीप पहुंचा जा सकता है। एक दूसरी चीज जिससे संबंधित आज का टॉपिक है, तो कल ही किसी एक भाई ने आबू रोड में तलहटी में हमसे बात की। वो आ गया है दिल्ली से तलहटी में। मैंने उससे पूछा, आप यहां कुछ काम करते हैं? कहा नहीं, मैं यहां आया हूं अपने को तैयार करने के लिए। वो बुजुर्ग हैं, बाबा भी अचानक शब्द कह रहा है रोज, तो उसको बहुत इच्छा है कि अचानक की तैयारी कर ले। तो एक छोटी सी बात मुझे सुनाई कि मेरा लड़का दिल्ली में बिजनेस है उनका, 6 मास से वो यहां थे तो फोन करता रहता था हर तीसरे चौथे दिन के, पिताजी बिजनेस में ये समस्या, आप आ जाओ या मुझे बताओ मैं क्या करूं। और मुझे हर हफ्ते जाना पड़ता था। मैं परेशान कि मैं तो यहां इसलिए नहीं आया, बिजनेस छोड़ के आया हूं, मुझे वो सब नहीं करना। तो उसने एक दिन फोन पर अपने लड़के को कहा, वो ज्ञान में है लड़का, कि जैसे समस्या आने पर तुम मुझे याद करते हो, टेलीफोन करते हो, तुम बाबा को नहीं कर सकते? और ये शब्द इतने अच्छे थे कि जैसे मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं आकर, वो भी तो तुम्हारी मदद कर सकता है। तो इतने अच्छे शब्द थे, उस भाई के दिल को छू गए। और इसने बताया कि उस दिन के बाद उसका कोई फोन नहीं आया। अर्थात जब भी उसके पास समस्या आती है, वो लौकिक पिता को याद करने की बजाय असली पिता को याद करता है और समस्या हल हो जाती है। ये एक ऐसा अच्छा रहस्य है हम सबके जीवन के लिए कि अगर हम इसका अपने जीवन में उपयोग करने लगे तो हमारा सारा मार्ग सरल हो जाए। बाबा ने कहा था पीछे ज्ञान सरोवर में एक संदेश में, अभी 3 हफ्ते पहले ही, सबने वो चीज नहीं सुनी है, 2 बातें कही थी कि जैसे तुम बच्चों को अगर कोई योग्य सर्विस दी जाती है तो तुम्हें बहुत खुशी होती है, और जो योग्य बच्चे हैं वो इंतजार करते हैं कि उन्हें कब सेवा दी जाए। बाबा भी तुम्हारी इंतजार करता है कि कब मेरे बच्चे मुझसे मदद के लिए कहें। कितनी अच्छी बात है ये, इंतजार करता है भगवान कि मेरे बच्चे कब मुझे मदद के लिए कहें। ये कहना मांगना नहीं है, ये कहना अधिकार है। और दूसरा कहा कि जब भी कोई व्यर्थ संकल्प आए तो सुप्रीम सर्जन को याद किया करो और संकल्पों से मुक्ति हो जाएगी। दोनों ही बहुत अच्छे प्रयोग हैं हम सभी के जीवन के लिए। जैसे जैसे ये संगम समाप्ति की ओर चल रहा है, वैसे वैसे बाबा खोलता जा रहा है अपने द्वार, अपनी शक्तियों को, अपनी मदद और वरदानों को हम सभी के लिए। हम सभी की बुद्धिमानी इसमें है कि फायदा उठाएं, सदा ही मदद के लिए तैयार है। बहुतों ने अनुभव किए होंगे जब से बाबा ने कहा है पिछले साल से कि मुझे यूज करो, तो बहुतों ने अनुभव किए होंगे उसे यूज करने के, उसको यूज करना जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जिसकी चुटकी बजाते ही सारा खेल बदल सकता है, जिसके संकल्प तुरंत साकार हो जाते हैं, उसके ये महावाक्य मैं तुम्हारा हूं मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। दूसरा, मैं तुम्हारे लिए हूं, और सुंदर बात है। तीसरा, मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए है, शक्तियां और वरदान। ये तीनों महावाक्य हम सबके लिए बहुत बड़ा वरदान है। हम अपने जीवन में सबसे पहले इनका प्रयोग करें अपने जीवन की छोटी छोटी बातों को समाप्त करने के लिए। मुझे सर्व संबंध के लिए कहा गया है, आपने सुना भी है इस पे बहुत कुछ और आप सुनाते भी हैं क्लासेज में, और सभी को कहीं ना कहीं तक इसके अनुभव भी हैं। ज्यादा विस्तार करने की तो आवश्यकता नहीं आप सबके सामने। हम सभी अव्यक्त बाबा से सन 76 के बाद इस बात पर अनेक बार प्रश्न किया करते थे। जब दीदी यहां पर थी तो प्रश्न ये होता था कि सब संबंधों का तो हमें पता ही नहीं है, उसका अनुभव कैसे करेंगे। जैसे मैं सोचता था कि मुझे गुरु क्या होता है इसका कुछ पता नहीं है, तो सद्गुरु रूप से नशा भी नहीं होता। ऐसे हम सबको सभी संबंधों का तो इस जीवन में न ज्ञान है न अनुभव है, तो हम उसका कैसे अनुभव कर सकते हैं। लेकिन बाबा ये कहते थे एक भी संबंध का अनुभव मिस न हो। एक बार बाबा ने उसी समय सन 80 में उत्तर दिया कि किसी एक संबंध के संपूर्ण अनुभव से भी सर्व संबंधों का अनुभव किया जा सकता है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। मैंने देखा कि अगर किसी एक माता को एक बच्चा हो, पति मर गया हो, कोई न बचा हो उसके पास, केवल एक बच्चा हो, तो उसके लिए वो एक बच्चा ही सारा संसार होता है। उसका संपूर्ण प्यार उसके लिए होता है, उसकी संपूर्ण आशाएं उसके लिए होती हैं, उसकी प्यासी नजरें भी उसकी ओर देखती हैं, उसको अगर मदद चाहिए तो भी वो उसी से कहती है। तो एक मां के लिए उसका बच्चा सब कुछ हो जाता है, अर्थात उसका संपूर्ण बुद्धि योग एक की तरफ हो जाता है। आपने बाबा के ये महावाक्य सुने होंगे अब से 3 साल पहले ही कि संपूर्ण ज्ञान क्या है। बाबा के शब्द हैं ये, एक के प्यार में मग्न होना ही संपूर्ण ज्ञान है। बहुत ही अच्छे महावाक्य हैं, सार लिए हुए एक बाबा के प्यार में हमारा मन मग्न हो जाए, ये हमारा संपूर्ण ज्ञान है। अर्थात जिनके पास संपूर्ण ज्ञान है वो एक के प्यार में बहुत अच्छी तरह मगन हो सकते हैं। ये प्रश्न उठता है सदा ही, आपसे भी स्टूडेंट्स पूछते होंगे कि बाबा से हमारा प्यार कैसे बढ़े। अब बाबा स्थूल चीज तो नहीं है, साकार मनुष्यों से तो हमारा प्यार हो जाता है, कोई हमें मदद करता है, कोई गुणवान होता है, उससे हमारा स्नेह हो जाता है। परंतु जो निराकार है उसके गुणों का हमें ज्ञान तो है, उसके गुणों को हमने साकार में भी अनेक बार देखा है, परंतु फिर भी वो इतना सूक्ष्म है कि उससे प्यार बढ़ाना ये मोटी बात तो नहीं है। कैसे बढ़ता है बाबा से प्यार, आपने नोट की है साकार महावाक्य की एक बात, बहुत अच्छी बात बाबा कहते हैं मुरली में, अभी अभी भी आया था कि जितना जितना तुम देह से न्यारे होते जाएंगे तुम्हारा प्यार बाबा से बढ़ता जाएगा। ये एक ऐसा सुंदर रहस्य है, अलौकिक रहस्य है, कि जितने हम सूक्ष्म उतना ही सूक्ष्म से हमारा लगाव, हमारा आकर्षण। तो हमें बाबा से अपने सर्व संबंध जोड़ने हैं। बाबा अभी भी लास्ट में हम सभी को ये 2 महावाक्य दे गए, एक बाबा ही संसार है और गुण शक्तियां निजी संस्कार है। बात कहने से तो पूर्ण नहीं हो जाती, मान भी लिया है हमने, परंतु इसके लिए हमें बहुत अच्छी तपस्या की आवश्यकता पड़ती है। जब मैंने ये सब बात सुनी तो मुझे बाबा के एक संबंध ने बहुत आकर्षित किया जिस पर मैं सोचा करता था, और भक्ति की कुछ चीजें मेरे ख्याल में थी, वो है खुदा दोस्त। बाबा की मुरली हम सब सुन चुके हैं 3-4 दिन पहले ही। बच्चा हो तो शिव बाबा जैसा, साजन हो तो शिव बाबा जैसा, बाप हो तो उस जैसा, ये हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और बाबा हम सबको ये रियलाइज कराना चाहते हैं कि तुम्हारे सभी दैहिक संबंधी, बाबा तो एक शब्द बोलते हमेशा, हम शायद उसे न बोले, कि तुम्हारे सभी संबंधी क्या हैं? दुख देने वाले हैं। हम तो शायद न बोलेंगे किसी के संबंधों में बहुत सुख भी मिला होगा, सभी तो दुख देने वाले नहीं होते, परंतु बाबा ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और हमें भी जानना चाहिए कि दैहिक संबंध सदा ही हमारा सहारा नहीं बन सकते, संबंध हमेशा हमेशा के लिए मनुष्य के कायम नहीं रह सकते। संबंधों में कड़वाहट है, संबंधों में स्वार्थ है, स्वार्थ पूरा होते ही कोई किसी को यहां नहीं पहचानता। आप सब देखते होंगे दुनिया में भाई भाइयों के झगड़े, जो एक दूसरे पर मर मिटने को तैयार थे वो देखना नहीं चाहते एक दूसरे को, बाप और बच्चों के झगड़े, संपत्ति पर झगड़े, जिसने उनकी पालना की वो उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। दिखाई देता है कि संबंधों में बहुत दुख है, रोज अनेकों की कहानियां देखकर सुनकर ये लगता है, दिखाई देता है कि ये संबंध मनुष्य को तृप्त नहीं कर सकते। और हम जानते हैं संबंधों का हमारे लिए कितना मूल्य है। अगर आज हम बीमार हो जाएं तो जो पीड़ा हमें भोगनी पड़ेगी उसमें कोई संबंध हमें काम नहीं आएगा। वो मदद कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, वो हमारी सेवा में उपस्थित रह सकते हैं, परंतु जो पीड़ा हमें होगी आंतरिक यातना से, हम जिससे भी गुजरेंगे उसमें कोई संबंध हमें काम नहीं आता, उसमें काम आता है बाबा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक में मगन हो जाएं, एक की तरफ देखने लगें। हमें ये ज्ञान तो है कि एक से सब कुछ प्राप्त होता है, परंतु ये हमारे जीवन में अनुभव हो जाए। तो मैं आपको कह रहा था कि मुझे खुदा दोस्त का संबंध बहुत अच्छा लगा, और तब मुझे याद आती थी महाभारत की कहानियां कि अर्जुन की दोस्ती श्री कृष्ण से थी। और आप सब जानते हैं कि अगर अर्जुन की दोस्ती श्री कृष्ण से ना होती तो श्री अर्जुन कब का नष्ट हो गया होता। श्री कृष्ण ने उसको जहां तहां बचा दिया, उसकी सुरक्षा कर दी, सब पांडवों को बचा दिया उस प्यार के कारण, उस मित्रता के कारण। तो भगवान सच्ची मित्रता निभाता है, वो सच्चा संबंध निभाता है। बाबा ने अभी पीछे कहा, अव्यक्त में ही कहा लास्ट मुरली में, और हम सब उसको जानते ही हैं, बाबा कहते हैं कि जिसने एक बार भी दिल से कह दिया मेरा बाबा, क्या कहा था बाबा ने आखिरी अव्यक्त मुरली में था ना अभी 3 तारीख की में, जिसने एक बार दिल से कह दिया बाबा ने उसे स्वीकार कर लिया। कितना विशाल दिल है, कितनी विशालता है। अगर हमें बाप समान बनना है तो हमें इतना ही विशाल बनना पड़ेगा। जो कुछ भी नहीं देखता, जिसने कह दिया मेरा बाबा, बस उसका वो हो गया। और जिसने उससे गहराई से नाता जोड़ लिया हो, सोचने की बात है उसको क्या मिल जाएगा। जिसने अपनी जीवन नैया एक के हवाले कर दी हो, उसको क्या मिल जाएगा। आप सबने भी कर दी है, लेकिन बहुत बहुत गहराई है इसमें। जीवन नैया एक के हवाले तो कर दी, एक से सारा नाता तो जोड़ लिया, लेकिन उसका रस हमारे जीवन को भरपूर करने लगे और जीवन की सारी नीरसता लोप हो जाए, आत्मा को और कहीं से कुछ प्राप्त करने की इच्छा न हो, इसकी आवश्यकता है। तो जब से मैंने गहराई से इस पर विचार किया और बाबा को सच्चे दिल से अपना दोस्त बनाया, तो दोस्ती के बहुत सारे अनुभव होने लगे। और मैंने ये पाया कि हम उतना जानते नहीं जितना वो हमारी दोस्ती का रिटर्न देता रहता है। आज बाबा की मुरली में एक बहुत अच्छी बात थी जिस पर हम सभी को अपने पूरे जीवन में चिंतन करना चाहिए। आज था तुम्हारे गुणों और शक्तियों की कितनी पूजा हो रही है, गायन हो रहा है। कहा ना, सामना करने की शक्ति, सामना करने का गुण, दुर्गा रूप में पूजा जा रहा है। ये किसी आत्मा का पूजन नहीं, ये गुण और शक्तियों का पूजन है। संतुष्टता का गुण संतोषी मां के रूप में पूजनीय है। और एक और बताया, काली निर्भयता काली के रूप में पूजी जा रही है। तो जिनका एक एक गुण भक्तों की इतनी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहा है, वो स्वयं क्या होंगे, ये जानने और विचार करने की बात है। मैं हमेशा अपने बारे में एक ही चीज सोचता हूं और अपने को याद दिलाता हूं कि तुम अभी तक अपने को नहीं जानते हो। स्वयं को जान लेना बहुत बड़ी चीज है, अपने श्रेष्ठ स्वमान को जान लेना सबसे बड़ी चीज है, और उससे आत्मा पूरी तरह भरपूर हो जाती है। तो मुझे बाबा की दोस्ती के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए, और मेरे अनुभव की शुरुआत, मैं केवल एक छोटा सा अनुभव आपके सामने रख के इस एक विषय का थोड़ा सा विस्तार आपके सामने कर दूं, आपको क्लास कराने में मदद मिले और अनुभव करने में भी। 82 में हमारे यहां दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, और उसके बाद मधुबन में बिना सीजन के, बिना प्रोग्राम के, एकदम से 2200 भाई बहने आ गए। दिल्ली में प्रोग्राम पूरा हुआ तो साउथ वाले सभी वाया मधुबन होकर गए। तब 2200 हमारे लिए बहुत बड़ी संख्या थी। 82 में रहने का मुश्किल से 700-800 का ही प्रबंध होगा। मधुबन में कोई हॉल नहीं था, ओम शांति भवन नहीं था, हमें बहुत काम करना पड़ा। मैं आपको एक चीज कहूं तो मैंने अपने जीवन में एक नियम बनाया था, और वो ये था कि जब बाबा की सेवाओं में मेरी जरूरत पड़े तो मैं किसी भी तरह सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहूं। तो ऐसा अनेक बार हुआ, और उसके रिटर्न में कई तरह की गिफ्ट वरदान बाबा से मिल गए। वो बहुत अच्छी चीजें हैं जीवन के लिए। तो 2200 लोग यहां आए, हमारे पास स्टाफ नहीं था, हमारे किचन के भाई भी दिल्ली गए हुए थे प्रोग्राम में, तो हमने रात दिन बहुत काम किया। गुरुवार का दिन था, मेरे जीवन का सबसे सुंदर अनुभव का दिन था वो। तो 7 बजे ठीक भोग बनाया हमने, 2 बजे से उठ के थोड़े से ही हम भाई थे, और 7 बजे मुझे बुखार होने लगा। 7 से 8 तक तेज बुखार होता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया, और वहां धुआं था, किचन में गर्मी थी, मेरे से बैठा नहीं जाए। तो मैंने बाबा से रूढ़िहान की, भोग शुरू हुआ और मेरी रूढ़िहान शुरू हुई, और मैंने बाबा को कहा कि आप दोस्त हो मेरे, और सच्चे दोस्त की परिभाषा है, बाबा को याद नहीं दिलाई, अपने को याद दिलाई। इंग्लिश में कहावत है वो कि आवश्यकता में जो मदद करे वही सच्चा दोस्त है। तो मैंने बाबा कहा आज मुझे आपकी जरूरत है। 10 तारीख तक ये सब लोग जाने वाले थे, मैंने कहा 10 तारीख तक के लिए मेरे बुखार को समाप्त कर दो और उसके बाद मैं तैयार रहूंगा। और इमीडिएटली मुझे अनुभव हुआ 8 से 9 मेरा बुखार वैसे ही धीमी गति से उतर गया, और 9 बजे मैं फिर तैयार हो गया। एक अच्छा अनुभव हो गया मुझे। और फिर जब 10 तारीख आई, फिर ठीक 7 बजे मुझे फिर से बुखार शुरू हुआ। लेकिन उस दिन भोली दादी को भी तेज बुखार हुआ, क्योंकि हम सब ने बहुत काम किया था, और वो तो रेस्ट में गई एकदम से। तो मैंने फिर बाबा से रिक्वेस्ट की कि एक बार तुमने मुझे दोस्ती के रूप से मदद की है, लेकिन अब मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे दोबारा मदद चाहिए जब तक भोली दादी रिटर्न हो। और फिर वही अनुभव हुआ मुझे, 8 से 9 मेरा बुखार फिर से उतर गया। और 15 तारीख को भोली दादी वापिस आई, और मैंने आते ही कहा कि अब आप यहां रहो और मैं चलता हूं, और ठीक मुझे वैसे ही बुखार शुरू हुआ। मेरे कहते ही मुझे अपने जीवन में बुखार बहुत हुए, और बाबा की मदद के अनुभव बहुत हुए बुखार में। बहुत ज्यादा अनुभव मुझे बीमारियों में खुदा दोस्ती के हैं। एक बार मुझे 18 दिन तक बुखार चला। हमारे यहां ना हॉस्पिटल था, ना कोई डॉक्टर, कुछ नहीं होता था। हम भगवान भरोसे ही जीते थे। तो बाबा आए अव्यक्त ओम शांति भवन में, और मैं काफी पीछे बैठा था और मुझे ये ख्याल नहीं था कि बाबा की दृष्टि कोई मेरे तक आएगी। मुझे बुखार था और अचानक बाबा की दृष्टि आई और मेरा अटेंशन गया, और बस 5 सेकंड में मेरा 18 दिन का बुखार लोप हो गया। ऐसे बहुत बार के अनुभव बीमारियों में बाबा की मदद के हुए। तो मुझे नशा होता गया कि बाबा सचमुच हमसे संबंध निभाता है। पहले ज्ञान था केवल कि सब संबंध जोड़ो, ये बनाओ, ये बनाओ, मां बनाओ, लेकिन कुछ अनुभव नहीं था। यहां से अनुभवों की शुरुआत हुई और मैंने ये सोच लिया कि इस दोस्ती का इस जीवन में पूरा लाभ उठाना है। मैं सोचता था, क्लास में मैं कहता हूं कि अगर एक एमपी 5 साल के लिए एमपी चुन के आता है तो वो सोचता है कि पता नहीं दोबारा मौका मिले या ना मिले, तो 5 साल का पूरा फायदा उठा ले, धन से भी भरपूर कर ले अपने को और बहुत सारा काम कर ले। तो हमारी दोस्ती भगवान से हुई है, ऐसा मौका 5000 साल में फिर कभी नहीं मिलेगा, इसका पूरा पूरा फायदा उठा लो। तो मैंने तो बहुत फायदा उठाया, पहली बात। अब हम इस विषय का विश्लेषण कर लें। ज्ञान युग अनुभव करना तो हरेक का अपने अपने ऊपर है। पहली चीज, जो संबंध हम उससे जोड़ना चाहते हैं उसको हमारी बुद्धि स्वीकार कर ले। आप देख सकते हैं अपने से कि अगर हम कहें कि शिव बाबा मेरा बच्चा है, तो हम में से प्राय सभी की बुद्धि स्वीकार नहीं करती। बहुत कम माताएं होती हैं जो भावुक होती हैं और कहती हैं शिव बाबा मेरा बच्चा है। बाबा उससे भी खुश हो जाता है, परंतु हमारा विवेक स्वीकार कर ले कि जो सर्वशक्तिवान है, जो संसार का क्रिएटर है, जो सबका बाप है, वो हमारा बच्चा है। पहले हमें इस पर चिंतन करना है, अपनी बुद्धि को स्वीकार कराना है कि बाबा कह रहे हैं कि मुझे अपना बच्चा बनाओ। तो हम अपनी बुद्धि को अच्छी तरह से समझा दें कि वो हमारा बच्चा है। पहली चीज, जिस संबंध को भी आप जोड़ना चाहते हैं, बुद्धि उसको स्वीकार करे। जब तक हमारी बुद्धि किसी चीज को स्वीकार नहीं करती, तब तक वो चीज हमारे जीवन में धारण नहीं होती है। और हमें अपने संपूर्ण जीवन में इस बात को देखना है गहराई से कि हमारा विवेक किन किन चीजों को अस्वीकार कर रहा है। बाबा कह रहा है, कहती तो है हमारी बुद्धि के ठीक है, परंतु साथ साथ बाहर फेंक देती है। वो इतनी स्वच्छ नहीं है जो ग्रहण कर पाए। हमें अपनी ग्रहण शक्ति को बढ़ाना है। कैसे ग्रहण शक्ति बढ़ती है तो अलग विषय, परंतु मैं 2 बातें आपके सामने रखूं। बाबा के महावाक्य हैं कि जो आत्माएं लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहती हैं, उनके पास वरदानों को ग्रहण करने की शक्ति आ जाती है। और यही बात ज्ञान की किसी बात को, धारणा की किसी बात को ग्रहण करने की है। जो जितना लंबा समय नशे में है, उतने ही उनके पास ग्रहण शक्ति बढ़ती है, और ग्रहण शक्ति के बाद ही धारणा शक्ति आती है। इन दोनों शब्दों पर जरा आप ध्यान दें। पहले बुद्धि ग्रहण करती है, फिर धारणा होती है, और बुद्धि ग्रहण तब करती है जब हम लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहते हैं। बाबा के ये शब्द हैं कि पवित्र बुद्धि ही ज्ञान को ग्रहण करती है। संपूर्ण सत्य बात है ये, परंतु इसको सरल कर दिया गया है। ईश्वरीय नशे के द्वारा हमारी बुद्धि की ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। तो पहला काम हमें संबंध के बारे में ये करना है। दूसरा कार्य, जब हमारी बुद्धि उस संबंध को ग्रहण कर ले, स्वीकार कर ले, तब हमें अभ्यास करना है उसके नशे में रहने का। नशा और स्मृति ये हमारे इस जीवन की दो महत्वपूर्ण तपस्या हैं। हमने भगवान को अपना दोस्त बनाया तो एक हमारी ये स्मृति में रहने लगे कि भगवान दोस्त है, और ये बात नशे में उतरने लगे कि जो सर्वशक्तिवान है वो तुम्हारा दोस्त है, जो सारे संसार का पालन करता है वो तुम्हारा दोस्त है, जो सारे संसार का सहारा है वो तुम्हारा दोस्त है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है वो तुम्हारा। भय खत्म हो जाता है, हीन भावनाएं खत्म हो जाती हैं। हम सब भी अपने नशे को बढ़ाएं। संबंध एक बहुत बड़ी चीज है, हमें भगवान ही नहीं मिला है, उससे हमारा संबंध हो गया है। तो जो भी संबंध आप जोड़ते हैं उसको इस नशे से चिंतन में समाओ। तीसरी चीज, अब इसका प्रैक्टिकल फायदा उठाना है। जो अनुभव होंगे वो यहां से होंगे। इससे पहले एक चीज और है, तीसरी चीज उसको हम कह दें तो उस संबंध के बारे में हमारे जो कर्तव्य हों वो हमें पूर्ण करने हैं। अगर हम उसको अपना बच्चा बनाते हैं तो एक बच्चे के लिए मां बाप का क्या कर्तव्य है वो हमें पूर्ण करना है। अगर हम उसे अपना मित्र बनाते हैं तो मित्र के लिए मित्र का क्या कर्तव्य होता है उसे हमें पूर्ण करना है। अगर हम उसे अपना भाई बनाते हैं, मां बनाते हैं, तो एक मां के लिए बच्चे का क्या कर्तव्य है वो पूर्ण करना है। कर्तव्य पूर्ण करने से संबंध मजबूत होते हैं। कर्तव्य पूर्ण नहीं किए जाते तो संबंधों का सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम बाबा को बच्चा बनाएं तो उस बच्चे पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दें। अगर हम उसको अपनी मां बनाएं तो मां के लिए वही करें जो एक बच्चे को अपने मां के लिए करना चाहिए। इसके बाद हम जीवन में अनुभवों को आगे बढ़ाएं। जो भी संबंध हमने उससे जोड़ा हो उसके द्वारा जीवन में रोज मदद लेने का अभ्यास करें। आपको जो भी काम करने हैं, अब मैं छोटे छोटे उदाहरण देता हूं, आप छोटे छोटे उदाहरणों का अभ्यास कर लें, छोटी छोटी बातों का। आप कहीं सर्विस पर जा रहे हैं, बस ही नहीं आ रही है, एक घंटा हो गया आपको खड़े खड़े, तो बाबा को उस संबंध से याद करो जो आपने उससे जोड़ा हुआ है और उसको कहो तुम क्या कर रहे हो। अगर आपने उसको बेटा बनाया तो कहो तुम्हारी मां बस स्टैंड पर खड़ी है और तुम सर्वशक्तिवान होकर देख रहे हो, केवल कहते हो मैं सारे संसार का मालिक हूं, और देखो क्या होता है। कर सकते हैं ऐसा, छोटी छोटी चीजों में आप उसको यूज करने लगो। संबंधों को तो यूज किया जाता है, संबंध किसी के हों और उनको यूज ही न किया जा रहा हो, संबंध किसी के हों और संबंधी साथ ही न रहते हों, एक रहता हो दिल्ली एक कलकत्ता, कभी मिलते भी ना हो, तो ऐसे संबंध जोड़ने से फायदा क्या। संबंधी को साथ रखना, संबंधी को यूज करना, कार्यों में साथ रखना, हर चीज में साथ रखना। आपके घर में आप सब लौकिक परिवारों का अनुभव करके आए, परिवार में अगर सुख की लहर हो जाए तो सारा परिवार सुखी। परिवार में अगर बहुत आपका बिजनेस है और बहुत ज्यादा लाभ हो गया, 1 लाख रुपए आ गए घर में, तो सारे परिवार पर उसका असर। परिवार में लॉस हो गया, कोई ट्रेजडी हो गई, कोई दुख हो गया, सारे परिवार पर उसका असर। तो जो कुछ आपको हो जाए उसका हिस्सेदार बना लो सर्वशक्तिवान को। अगर दुख आ जाए आपके जीवन में तो ले कहो उसे कि ये दुख तुम भी बांटो। हमारे संबंधी बने हो तो ऊपर बैठने के लिए नहीं, ये दुख तुम्हारा है इसको ले जाओ। आप काम कर रहे हैं, आपको बहुत काम है, आप अकेले हैं और कोई साथी नहीं है, बुलाओ आप अपने बच्चे को, कहो काम करो आके, 5000 साल ऊपर ही तो बैठना है, अब आ जाओ नीचे हमें मदद करो, और देखो क्या आनंद आता है आपके जीवन में। आपको लगेगा वो कार्य कर रहा है। मुझे एक छोटी सी मूवी यहां दिखाई गई थी मधुबन में, एक महाराष्ट्र में भक्त हुआ है, मुझे नाम तो याद नहीं, नामदेव संत ज्ञानेश्वर के समय का, तो उसने कैसे पवित्रता के कारण अपने हाथ काट लिए थे और इतना मगन था वो कि उसके पैरों के तले बच्चा कुचल के मर गया था। हाँ, तो सुनी है जो महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा नहीं तो कैसे श्री कृष्ण नौकर बनकर उसके घर में आ जाता है और उसके सारे काम करता है। बहुत अच्छी वो दिखाई गई उसकी कहानी। मैं सोचता था, और ये घटना थोड़ी बहुत काल्पनिक हो सकती है लेकिन सत्य है, जुड़ सकता है उस घटना में बहुत कुछ कहानीकारों ने जोड़ा हो, लेकिन ये घटना सत्य घटना थी। तो जब एक भक्त की मदद करने के लिए इस तरह श्री कृष्ण एक साधारण रूप में आ सकता है, उसके सारे काम कर रहा है वो, तो जिनका संबंध शिव बाबा से इतना समीप का हो, क्या उन्हें वो मदद नहीं करेगा? हमें अनुभव करना है और अपने अनुभव को इतने तक बढ़ाना है कि बाबा को याद करें और बाबा सामने हाजिर। और ये है, ये सत्य है, ये कल्पना नहीं है। आगे आने वाले समय में जबकि चारों ओर विनाश होगा, उस समय हमें इन अनुभवों की बहुत बहुत जरूरत पड़ेगी। अब जरूरत कम पड़ती है, तब बहुत जरूरत पड़ेगी, इसलिए अभी से हमें अपने अनुभवों को इतना बढ़ा लेना है कि बाबा को अधिकार से याद किया, अधिकार से कहा कि ये करो, और उसने किया। हम उसको बांध सकते हैं संबंधों के प्यार में, कुछ भी कराने के लिए। भक्तों ने अगर उसको बांध लिया है तो हम भी उससे संबंध जोड़कर अपने प्यार में उसको बांध सकते हैं। बस इतना ही है कि हम भी बंधे हुए हों उससे। तो इस तरह हम इन भिन्न भिन्न तरह के संबंधों को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत अच्छे अनुभव लोगों को होते हैं। आप ये बात सुन के हैरान होंगे, बहुत साल पहले की बात है, अब से 25 साल पहले की बात, हमारे पास एक ट्रक लिया गया था यहाँ, और एक भाई उसको ड्राइवर के रूप में रखा गया था। वो एक दिन गया था यहाँ गांव से मजदूर लेने के लिए, सारा दिन सवेरे गया वो जल्दी, सारा दिन गांव में उसने मजदूर ढूंढे, ट्रक में बैठाए, और रात को वो उनको ला रहा था। थक गया था बहुत ज्यादा। सत्य घटना हूबहू हमारे मधुबन के एक भाई की, वो अभी भी हैं। वो नीचे से चढ़ने लगे ऊपर, अब तो सड़क बहुत सुंदर है और यहाँ बहुत सुंदर है सब कुछ, तब तो एक गांव था और सड़क भी टूटी फूटी, रास्ते में कोई मिलने वाला देखने वाला, कोई बल्ब लाइट कुछ नहीं थी, और उसको नींद आ गई। और उसकी आंख तब खुली जब वो मधुबन के गेट में घुस गया। अब आप देख लो, अब तो सब अनेक बार गए हैं, नीचे आए हैं, किसने ट्रक चलाया? बिल्कुल प्रैक्टिकल घटना है। बाबा इस तरह हर जगह हमें मदद करता है, हमारे जीवन की हर कठिनाई को वो सरल कर सकता है अगर हम उससे इस तरह संबंध जोड़ें। आपके पास पैसा नहीं है, आ सकता है पैसा? आ सकता है? मैंने अपने पिछले लेख में एक छोटी सी बात लिखी थी, अगर किसी ने पढ़ी हो। हाँ, अनुभव है वो कि जिनके आह्वान पर भगवान आ जाता है, क्या उनके आह्वान पर धन संपत्ति नहीं आएगी? जिनके मंदिरों में धन संपत्ति के ढेर लगाए जाते हैं, क्या उनके चरणों में धन संपत्ति नहीं आएगी? आवश्यकता केवल इस चीज की है कि हम केवल इस स्वरूप में आ जाएं। धन की कोई कमी नहीं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, मांगने तो सब आपके पास आएंगे, आएंगे ना, धन भी मांगने आएंगे। अपने इस स्वमान में स्थित होने की आवश्यकता है। तो इस तरह बाबा को अपना साथी बनाकर अगर हम जीवन के हर फील्ड में उसको यूज करने लगें, तो जीवन में कोई कठिनाई नहीं। अब समय तो नहीं है, मैंने अपने रोज के जीवन में उसको पिछले 20 सालों में बहुत बहुत यूज किया है, काम काज में यूज किया है, कई छोटी समस्याओं और परिस्थितियों में यूज किया है। मैंने इस तरह भी यूज किया कि कई बार हमारा खाना हमने देखा बहुत कम है, बहुत कम। और मैंने बाबा को कहा कि अब कुछ भी करो कि सबके पेट भरो या कम खाए, सब कुछ करो, खाना यही पूरा होना चाहिए। और वैसा ही हुआ, कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे और बना नहीं सकते थे। ऐसे छोटे अनुभव भी रोज होते रहे। तो बाबा को अधिकार से कहने से हमें सब कुछ मदद के रूप में प्राप्त होता है। मैं आप सबको ये कहूंगा जो मेरी आप सबके लिए भावना है, पहले तो मैं आपको ये कहूं कि अगर आप अपनी सेवाओं को सहज रूप से बढ़ाना चाहते हैं तो एक छोटी सी चीज का प्रयोग कर लें जीवन में, कि जो आपके साथी हैं, सेंटर में रहने वाली बहनें या भाई या आने वाले स्टूडेंट्स, ये सब महान आत्माएं हैं, ऐसी वृत्ति से उन्हें देखो। अब देखो क्या होता है इससे। आप अगर ये मान लें कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, तो 15 दिन के लिए फॉर एक्सपेरिमेंट इसको करके देखो, केवल 15 दिन के लिए। सेवाएं किस तरह वृद्धि को पाती हैं इससे, और सेंटर का माहौल कितना शक्तिशाली और आकर्षक होता है। सब महान आत्माएं हैं सब महान। अगर हमें महान दिखाई नहीं देती तो वो हमारी अपनी गलती है। और अगर मैं आपको कुछ कहूं, आपने क्लासेस बहुत सुन ली हैं और बहुत कुछ आपके पास आ गया है, परंतु अपने महान लक्ष्य को थोड़े समय में प्राप्त कर लेने के लिए सभी उन छोटी बातों से ऊपर उठ जाएं जिनमें हैं। मैं खुले शब्दों में कहूं, अगर आपको आपके जीवन में सताया जाए, दबाया जाए, आप पर आरोप लगा दिया जाए, आपके बारे में उल्टी सुल्टी बात कही जाए, आपकी खुशी को भिन्न भिन्न तरह से गुम किया जाए, कोई आपके पीछे ही लग जाए, इन सब बातों में बाबा को यूज करो। और एक चीज अपने अंदर बहुत मजबूती से पकड़ लो कि सत्यता में बल है। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। आप सब जानते हैं ये किसने कहा हुआ है, सत्यता को स्वयं सिद्ध होने की सिद्धि है। सत्यता के सूर्य को असत्यता के काले बादल ढक नहीं सकते। थोड़ी देर के लिए मान लें जो कुछ इस संसार में होता रहता है कि असत्य की विजय, सत्य की हार है। तो ये कि सत्य की विजय होगी, परंतु जब कभी ऐसा हो जाए, असत्य की विजय दिखाई देने लगे और सत्य की हार हो जाए, जो होता रहता है, असत्य वालों की पहुंच ऊपर तक ज्यादा हो, असत्य वाले शक्तिशाली हों और वो सत्य को दबा दें, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ऐसे असत्य की विजय में बल नहीं होता। सत्य की हार भी हमें बलवान बना देगी, और जिसका हमने हाथ पकड़ा है उसे सत्य का ज्ञान है, उससे कुछ छुप नहीं सकता। इसलिए बहनें जो डर जाती हैं, जो अपनी खुशी को खो देती हैं, जो दबाव में आकर अपने स्वमान को भुला देती हैं और एक नए चक्रव्यूह में अपने को डाल लेती हैं, उससे निकलने की आवश्यकता है। एक समय आ रहा है जब एक झटका यहां लगने वाला है, मुझे ऐसा दिखाई देता है, और इस ब्राह्मण संसार की बहुत सारी आत्माएं जो अहम के कारण ऐसा कुछ कर रही हैं, वो सब संभल जाएंगी और हमारा ये पूरा परिवार निष्कंटक निर्विघ्न हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो कुछ हमारे मार्ग में आता है, ये जानकर कि ये हमें शक्तिशाली बनाने के लिए आ रहा है, ये जानकर कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो बिना कारण नहीं हो रहा है, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम स्वयं हैं। बिना घबराए स्वयं को इन चीजों से बाहर निकाल लेना चाहिए। मुझे हमेशा एक बात, आप सब बहुत सारी बहनों को देखकर और बहुत सारे गृहस्थियों को देखकर भी समझ में आती है, बाबा ने तो 16108 की माला की बात कही है। 16000 की माला में तो वो सब हैं जो समर्पित हो चुके, जो आगे हो जाएंगे तो 16108 तो समर्पित हो जाएंगे, लेकिन एक 108 गुप्त मेहनत करने वाले पुरुषार्थी जिन्होंने अपने जीवन को योगी जीवन बना लिया है, जो छोटे विचारों से ऊपर उठ गए हैं, जिन्होंने अहम को नष्ट कर दिया है, जिन्होंने बाबा को बहुत स्ट्रांगली पकड़ लिया है, ऐसी आत्माएं गुप्त हैं, आप सब में से ही हैं। मैं आप सब में से बहुतों को जानता हूं, जिनको पर्सनली नहीं जानता उनके चेहरों से समझ सकता हूं कि ये आत्माएं बहुत आगे जाएंगी और जा रही हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए कि बहुत सारी दिखने वाली चीजों को भूलकर, इग्नोर करते हुए अपनी आंतरिक यात्रा को तेज करें। समय हम सबके सामने अब बहुत तेजी से बदलता हुआ आ रहा है, बाबा के इशारों से भी समझते हैं और ज्ञान से भी हम समझ सकते हैं। 60 साल पूरे हो गए, अब तो परिवर्तन तेजी से हो गई, हम सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज लेकर, चुनौतियां लेकर आ रहा है। अब हमें न केवल अपने को लेकिन संसार की अनेक आत्माओं को भी सहारा देना है। इसलिए अब जब आपकी भट्टी संपूर्ण हो रही है, मैं आप सभी को इतना ही याद दिलाऊंगा कि अपने महान लक्ष्य पर एकाग्र करो स्वयं को, महान लक्ष्य स्वयं के बनाओ। केवल बाप समान बनना नहीं, बाप समान स्थिति को 10 भागों में बांटकर अपने 10 लक्ष्य बनाओ और उस ओर चलो, और अपने लक्ष्य की ओर इतनी तेजी से चलो कि इधर उधर कुछ भी दिखाई न दे, ऐसा समय की मांग है। जब हम लक्ष्य की ओर नहीं चलते तो हमें चारों ओर बहुत कुछ दिखने लगता है और हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। तो आप इन चीजों का अभ्यास करें बहुत अच्छी तरह। बहुत सुंदर मौका बाबा ने दिया है, वो हमारा है और उसे हम यूज कर सकते हैं। ओम शांति।